इकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम जिस किताब की परतों को खोलने जा रहे हैं वो है टेपिंग चिन का कहानी संग्रह लैंड ऑफ बिग नंबर्स स्टोरीज। ये कहानियां हमें आज के चीन की, आप कह सकते हैं, एक ऐसी तस्वीर दिखाती हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस और वो जो आंकड़े होते हैं उनके पीछे कहीं छिप जाती है।
हाँ बिल्कुल, और टेपिंग चिन की अपनी कहानी भी काफी दिलचस्प है। ताइवानी अप्रवासी माता पिता की बेटी हैं, अमेरिका में पली बढ़ी और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए बीजिंग में रिपोर्टिंग की, तो उनके पास एक बहुत ही अनोखा नज़रिया है। वो चीन को अंदर से भी समझती हैं और बाहर से भी देख पाती हैं।
सही कहा, और यही जो दोहरा दृष्टिकोण है यही उनके लेखन को वो गहराई और बारीकी देता है। लैंड ऑफ बिग नंबर्स उनका पहला कहानी संग्रह है, 2021 में आया और आते ही मतलब काफ़ी चर्चित रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स, एनपीआर जैसी जगहों पर इसकी बहुत तारीफ हुई। ये उन किताबों में से है जो चीन के ज़बरदस्त बदलावों और उसकी मानवीय कीमत पर रोशनी डालती हैं।
और किताब का शीर्षक लैंड ऑफ बिग नंबर्स यानी बड़ी संख्याओं का देश, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। चीन मतलब वो विशाल आबादी, आसमान छूती जीडीपी, तकनीकी तरक्की के बड़े बड़े दावे।
हाँ, लेकिन चैन एक सवाल उठाती हैं कि इन बड़ी संख्याओं के शोर में उन छोटी निजी कहानियों का क्या होता है, उन लोगों का क्या जो इन आंकड़ों का हिस्सा तो है पर जिनकी जिंदगी, जिनके सपने, जिनकी जद्दोजहद वो इन नंबर्स में कैद नहीं हो सकती। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन कहानियों के जरिए उन मानवीय अनुभवों को थोड़ा समझने की।
हाँ, तो ये कोई एक बंधा हुआ उपन्यास नहीं है बल्कि अलग अलग कहानियों का एक गुलदस्ता है कह सकते हैं। करीब 10-12 कहानियां हैं इसमें जो हमें आधुनिक चीन के अलग अलग रंग दिखाती हैं। शहरों की भागदौड़ है, गांवों का ठहराव है, देश के अंदर के लोग, बाहर बसे चीनी।
और इन सब कहानियों के बीच ना एक तनाव, एक टेंशन लगातार महसूस होता है। एक तरफ है चीन की वो विशाल सरकारी मशीनरी और तेज रफ्तार बदलाव, और दूसरी तरफ है आम लोग जो अपनी पहचान, अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी का मतलब तलाश रहे हैं।
बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि जब आपकी जिंदगी एक इतने बड़े सिस्टम में महज एक गिनती सी लगने लगे तो आप अपनी इंसानियत, अपने सपनों को कैसे बचाए रखते हैं, कैसे वो उम्मीद और नौउम्मीदी के बीच अपना रास्ता बनाते हैं।
चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए कुछ कहानियों में थोड़ा गहरा उतरते हैं। शुरुआत लुलू से करें, ये कहानी मेरे जहन में कहीं अटक सी गई है।
हाँ, लुलू वाकई बहुत असरदार कहानी है। ये दो जुड़वा भाई बहन की कहानी है। भाई जो है वो काफी तेज तर्रार है, इंटरनेट की दुनिया में रमा हुआ एक जोशीला राजनीतिक एक्टिविस्ट बन जाता है। वो आज़ादी, इंसाफ जैसे बड़े आदर्शों में यकीन रखता है, लेकिन उसका रास्ता जाहिर है जोखिम भरा है।
और दूसरी तरफ है उसकी जुड़वा बहन लुलू, वो ज्यादा यथार्थवादी है, या शायद कह लें कि हालात से समझौता करने वाली। वो एक सरकारी अफसर की असिस्टेंट बन जाती है। उसकी जिंदगी नैतिक दुविधाओं और वो चुपचाप सही जाने वाली चिंताओं से भरी है। उसे सिस्टम का हिस्सा बनकर रहना है भले ही मन न माने।
कहानी में जो असली मोड़ आता है वो तब है जब भाई को उसके एक्टिविज्म के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब लुलू एक अजीब कश्मकश में फंस जाती है। एक तरफ वो सिस्टम है जिसके लिए वो काम करती है और दूसरी तरफ उसका अपना भाई। कहानी का अंत बहुत बहुत मार्मिक है, उनके रिश्ते में आए उस दरार को दिखाता है जो शायद कभी भरेगी नहीं।
ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे राजनीतिक विचारधाराएं, या कहें कि दुनिया को देखने के अलग अलग नज़रिए, परिवारों को भी बांट सकते हैं। ये सिर्फ व्यक्ति बनाम राज्य का मामला नहीं है, ये भाई बनाम बहन, आदर्श बनाम यथार्थ का भी संघर्ष है। जैसे कहानी में एक जगह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना कि कैसे एक ही कोख से जन्मे दो लोग दुनिया को इतने अलग अलग रंगों में देखने लगे। एक भाई को लगता है सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, सच और झूठ, जबकि बहन को जिंदगी के वो धुंधले समझौते वाले रंगों में जीना पड़ता है।
और ये समझौते सिर्फ राजनीतिक नहीं होते हैं ना, कई बार ये निजी सपनों और सामाजिक हकीकत के बीच भी होते हैं। जैसे अगली कहानी है फ्लाइंग मशीन।
हाँ, फ्लाइंग मशीन, ये कहानी बिल्कुल अलग मिजाज की है। एक दूर के गांव का बूढ़ा अनपढ़ किसान है, ओल्ड काउ, उसे जुनून सवार होता है कबाड़ से अपना हवाई जहाज बनाने का। उसे ना नाम चाहिए ना पैसा, बस एक धुन है कुछ बनाने की, उड़ने की।
लेकिन उसके सपने के रास्ते में गांव वालों का मजाक है और वो सरकारी बाबुओं की लाल फीता शाही, कोई उसके इस पागलपन को समझता ही नहीं।
यहाँ चेन दिखाती है कि कैसे एक अकेले इंसान का छोटा सा सपना भी उस विशाल बेनाम सी नौकरशाही के लिए एक चुनौती बन सकता है। ये कहानी उस जिद की कहानी है जो इंसान को मुश्किल हालात में भी कुछ रचने की प्रेरणा देती है। शायद वो जहाज कभी उड़े ही नहीं, लेकिन जैसा कहानी इशारा करती है, असली बात यह नहीं थी कि मशीन काम करेगी या नहीं, असली बात थी उस यकीन को बनाए रखना कि वो उड़ सकती है। वो उम्मीद ही अपने आप में उड़ान है, नहीं?
बिल्कुल, ये उम्मीद और नाउम्मीदी का खेल एक और कहानी में बड़े दिलचस्प ढंग से सामने आता है, गुबेइको स्पिरिट।
ओ हाँ, गुबेइको स्पिरिट की कहानी तो कमाल का व्यंग्य है। कुछ लोग हैं जो एक नई मेट्रो लाइन के खुलने का सालों से इंतजार कर रहे हैं। उद्घाटन की तारीख टलती जाती है, टलती जाती है।
और कहानी का फोकस मेट्रो पर है ही नहीं, बल्कि उन इंतजार करते लोगों पर है। कैसे वो स्टेशन पर ही एक छोटा सा समुदाय बना लेते हैं, उनका सब्र धीरे धीरे एक अजीब से मजाक और फिर वो थक कर बैठ जाने वाली उदासी में बदल जाता है, जैसे इंतजार ही उनकी मंजिल बन गया हो।
ये कहानी तरक्की के बड़े बड़े वादों पर एक तरह का कटाक्ष है। कैसे सिस्टम की सुस्ती और बेपरवाही आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, और फिर भी लोग उसमें भी जीने का, जुड़े रहने का कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। ये दिखाता है नागरिक भरोसे और सरकारी वादों के बीच की खाई को। और शीर्षक की विडंबना देखिए, गुबेइको स्पिरिट। ये कौन सी स्पिरिट है? ये तो लंबे इंतजार से जन्मी थकान और शायद थोड़ी सी बेबसी की स्पिरिट लगती है।
सही कहा। और ये बड़ी संख्या वाला थीम, जहां इंसान बस एक नंबर बनकर रह जाता है, वो शीर्षक कहानी लैंड ऑफ बिग नंबर्स में खुलकर सामने आता है।
हाँ, इस कहानी का नायक है झू फेंग, एक नौजवान जो अपनी पक्की सरकारी नौकरी छोड़कर चीनी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने कूद पड़ता है।
वो उस चीनी सपने के पीछे भाग रहा है, जल्दी अमीर बनने का सपना।
और शुरुआत में लगता भी है भी सपना जैसे सच हो रहा है।
हाँ।
वो तेजी से पैसा बनाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, महत्वाकांक्षा और लालच उसे ऊपर उठाते हैं।
लेकिन फिर आता है मार्केट क्रैश, और जैसे ताश का महल ढहता है, वैसे ही झू फेंग की दुनिया भी बिखर जाती है। ये कहानी सट्टा बाजार यानी वो स्पेक्युलेटिव कैपिटलिज्म के खतरों को दिखाती है, वो माहौल जहां चीज़ों की असल कीमत से ज़्यादा उनकी बढ़ती घटती कीमतों पर दांव लगाकर फटाफट पैसा बनाने की होड़ हो। ये उस चीनी सपने के खोखलेपन को भी उजागर करती है, जहां जोखिम लेने का इनाम बर्बादी भी हो सकता है।
और वो बात बहुत चुभती है जो कहानी में शायद कही गई है, कि बड़ी संख्याओं की भूमि में आप या तो शून्य थे या एक चौंका देने वाली रकम का हिस्सा। जैसे इंसान की अपनी कोई कीमत ही नहीं, वो बस सिस्टम के खेल में एक मोहरा है। इन कहानियों को अगर एक साथ देखें तो कई धागे इन्हें जोड़ते हुए नजर आते हैं। एक तो वही व्यक्ति बनाम राज्य या व्यक्ति बनाम सिस्टम का संघर्ष।
हाँ।
जो लुलू और फ्लाइंग मशीन में दिखा।
दूसरा, तरक्की की कीमत या कई बार तरक्की का वो भ्रम, जैसे गुबेइको स्पिरिट में मेट्रो का इंतजार या लैंड ऑफ बिग नंबर्स में शेयर बाजार का बुलबुला।
बिल्कुल। और फिर पहचान और अपनेपन की तलाश का सवाल भी है, खासकर उन पात्रों के लिए जो परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसे हैं, या जो चीन और पश्चिम के बीच अपनी जगह ढूंढ रहे हैं।
हाँ, और एक चीज जो मुझे इन कहानियों में लगातार महसूस हुई वो है कम्युनिकेशन गैप, मतलब संवाद की कमी। लोग एक दूसरे के पास होके भी कितने दूर हैं, कितने अकेले। तकनीक ने दुनिया को जोड़ा है, पर क्या वो इंसानी जुड़ाव कम हुआ है?
ये एक बहुत अहम सवाल है, और इन सब के बीच उम्मीद और नाउम्मीदी का वो चक्र चलता रहता है। लोग सपने देखते हैं, टूटते हैं, फिर शायद कोई नई उम्मीद पाल लेते हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि इंसान कितना लचीला हो सकता है।
बिल्कुल, जैसे तेज हवा में बांस झुक जाता है पर टूटता नहीं, कुछ वैसा ही पात्र अक्सर सीधे टकराव की बजाय चुपचाप सहते हैं, समझौते करते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं एक चिंगारी बाकी रहती है। ये कोई जोरदार बगावत नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी इंसानियत को बचाए रखने की एक खामोश जद्दोजहद है।
और टीपिंग चैन की लिखने की शैली भी इस खामोशी को, इन अंदरूनी संघर्षों को बखूबी पकड़ती है। उनमें एक पत्रकार वाली नज़र है, चीज़ों को बारीकी से देखना, तथ्यों को सटीकता से रखना, लेकिन साथ ही उनके किरदारों के लिए गहरी हमदर्दी भी है। वो अक्सर निकट तृतीय पुरुष नज़रिए से लिखती हैं, जिससे हम किरदारों के मन में झांक पाते हैं।
उनका लेखन ज़्यादातर यथार्थवादी है, मतलब असल जिंदगी जैसा, लेकिन कहीं कहीं वो अति यथार्थवाद का भी इस्तेमाल करती हैं, यानी ऐसी स्थितियाँ जो थोड़ी अजीब, थोड़ी सपने जैसी लगें पर गहरा मतलब रखती हों। जैसे न्यू फ्रूट कहानी में एक फल है जो आपकी भावनाएं बदल सकता है, या गुबेइको स्पिरिट का वो कभी न खत्म होने वाला इंतजार। ये असलियत से परे जाकर असलियत को शायद ज्यादा उजागर करता है।
और प्रतीकों का इस्तेमाल भी कमाल का है। वो उड़ने वाली मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं, वो सपनों और आजादी का प्रतीक है।
सही।
बड़ी संख्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं, वो उस सिस्टम का प्रतीक है जो इंसान को छोटा महसूस कराता है। ये प्रतीक कहानी को और गहरे मायने देते हैं।
इन कहानियों को पढ़ने के बाद जो एहसास बचता है वो मिला जुला सा है। किरदारों से हमदर्दी होती है, उनके संघर्षों पर दुख होता है, पर उनकी हिम्मत देखकर एक तरह का सम्मान भी पैदा होता है। ये कहानियां उन आंकड़ों को चेहरा देती हैं, चीन की एक ज्यादा जटिल, ज्यादा मानवीय तस्वीर पेश करती हैं, जो हमें बनी बनाई धारणाओं से आगे सोचने पर मजबूर करती हैं।
हाँ, ये कहानी हमें तैयार जवाब नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछती हैं, और शायद यही अच्छी कला का काम है। वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि तरक्की का मतलब क्या है, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन कैसे बने, और बदलाव की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपनी जड़ों को कैसे थामे रखें।
अंत में ये कहानियां बस यही याद दिलाती हैं कि हर बड़ी कहानी के पीछे, हर बड़े आंकड़े के पीछे अनगिनत छोटी निजी कहानियां होती हैं, लोगों के डर, उनकी उम्मीदें, उनके टूटे और जुड़े रिश्ते।
और ये दिखाती हैं कि कैसे इंसान हर दौर में, हर जगह, मुश्किलों के बीच भी अर्थ, जुड़ाव और अपनी पहचान को बनाए रखने की कोशिश करता है। ये कोशिश ही शायद इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत है।
बिल्कुल।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।